जयांज बिहारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदनांदन ब्रज जन रंजन यशोदनांदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदनांदन ब्रज जन रंजन यशोदनांदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranita. Prabhupad, 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 Prabhupad. Jai Om Vishnupat Paramhans Parivrajka Acharya Shri Shri Stoktar Sashri His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBT Sanstapak Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupat Paramhans Parivrajka Acharya Shri Shri Stoktar Sashri His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anant Koti Vaishnavrind Ki Jai. Prem Se Kahiye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrind Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulasi Maharani Ki Jai, Samavet Bhakt Vrind Ki Jai, Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Shri Navadeep Mayapur Dham Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Sabhi Ekatrit Bhakton Ki Jai Jai Kar Ho Sabhi Ekatrit Bhakton Ki Jai Jai Kar Ho Sabhi Ekatrit Bhakton Ki Jai Jai Kar Ho गुरु और गौरांग की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के स्कंद 8 से अध्याय 5 और श्लोक संख्या 32। पादो महीयं स्वकृते वयस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः सवे महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदताम् ब्रह्म महाविभूतिः पादो महीयं सकृते वयस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः सवे महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदताम् ब्रह्म महाविभूतिः। शब्दार्थ पादों उनके चरण कमल मही पृथ्वी इयम यह स्वकृत उन्हीं के द्वारा उत्पन्न इवा निसंदेह यस्य जिसका चतुर्विधः चार प्रकार के जीवों का यत्र जहां पर ही निसंदेह भूत सर्गः भौतिक सृष्टि सह वे निसंदेह महापुरुषः परम पुरुष आत्मतंत्रः आत्मनिर्भर आत्माराम प्रसीदताम वे हम पर कृपालु हो ब्रह्मः महानतम महाविभूतिः असीम शक्ति से युक्त। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव होते हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से युक्त उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य मही शब्द पांच भौतिक तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश का सूचक है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे महत तत्व अर्थार्थ समग्र भौतिक शक्ति श्री भगवान के चरण कमलों पर टिकी है क्योंकि यह विराट जगत श्री भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में चार प्रकार के जीव हैं जरायुज भ्रूण से उत्पन्न अंडज अंडे से उत्पन्न स्वेदज पसीने से उत्पन्न तथा उदीभज बीज से उत्पन्न। जैसे कि वेदांत सूत्र से पुष्टि होती है जन्मादे अस्य यतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उत्पन्न होती है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं किंतु श्री भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतएव श्री भगवान सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है श्री भगवान के एक अन्य ऐश्वर्य मात्र ही हैं। भौतिक सृष्टि श्री भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है। अतः श्री भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। श्री भगवान का विश्व रूप अर्थात वैराज मूर्ति उनका एक अन्य लक्षण है। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सहजीवं सावदैतं सावदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा निवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिने। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अध्याय का आरंभ हुआ जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया और दुर्वासा ऋषि के अपमान के कारण उनके श्राप के कारण इंद्र व अन्य देवताओं की शक्ति चली गई। देवता गण इस अपराध के उपरांत शक्ति विहीन अवस्था में असुरों से पराजित हो गए और ऐसी अवस्था में वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे सहायता की मांग करने के लिए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठते हैं भगवान के और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन सबको श्वेत द्वीप लेकर जाते हैं, उस दूत के सागर में जहां भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा नहीं कभी, लेकिन उनके लिए प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हैं। और जब उनका गुणगान करते हैं, यानी कि प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि यही है विधि भगवान को देखने और जानने की, उन्हें देखकर नहीं, उनके बारे में सुनकर, उनका गुणगान कर भक्ति की विधि का आश्रय लेकर ही मात्र भगवान को जाना जा सकता है। तो ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते करते इस श्लोक तक आते हैं जहां पर वो कहते हैं कि शायद सभी भगवान के व्यक्तिगत रूप से प्रभावित ना हो, लेकिन उनके विराट रूप का भी गुणगान किया जाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हमेशा होंगे जो भगवान के विराट रूप से, विश्व रूप से प्रभावित होंगे। और इस श्लोक की श्रृंखला से आगे अन्य श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान के विश्व रूप का गुणगान कर रहे हैं और उनके चरणों से आरंभ किया है, पादो, और उनके चरणों की तुलना, यानी ये पंच महाभूत उनके चरणों पर आश्रित है। मही, श्रील प्रभुपाद जी श्लोक में इसकी व्याख्या दे रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी, जैसे कि प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इस बात को कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान पूर्णता स्वतंत्र हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जीव अनु चैतन्य है और भगवान विभु चैतन्य है, और अनु चैतन्य के पास वो क्षमता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं कि वो विभु चैतन्य को जान सके। इसीलिए शास्त्रों में भगवान का ऐश्वर्य और उनकी मधुरता दोनों का समन्वय किया गया। हालांकि लक्ष्य भक्ति मार्ग का भगवान से प्रेम करना है, उनसे राग विकसित करना है, और राग मार्ग में ऐश्वर्य कई बार विकार भी ला सकता है, लेकिन ऐश्वर्य को जानना आवश्यक क्यों है, और विशेषता साधना की स्थिति में, साधक होने की अवस्था में। तो आचार्य कहते हैं कि ऐश्वर्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भक्ति में विविधता, वैरायटी उत्पन्न करता है, एक इसका अलग आस्वादन है। ऐश्वर्य को जानने के उपरांत भगवान के प्रति हमारा समर्पण, जब हम इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य से प्रभावित हैं और हमारा आकर्षण इस संसार के ऐश्वर्य के प्रति है, जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि ये भौतिक सृष्टि भगवान का ऐश्वर्य है, और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हैं ये जाने बगैर कि एक्चुअली वो भगवान का ही ऐश्वर्य है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य जब इस भौतिक प्रकृति कि सुंदरता उसके ऐश्वर्य को देखते हैं तो उस ऐश्वर्य के पीछे वो जो व्यक्ति है जो ये कहता है मया अध्यक्षेन प्रकृति, तो जिसकी अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है तो वो आचार्य इस ऐश्वर्य के माध्यम से उस व्यक्ति का दर्शन करवाते हैं। इसलिए शास्त्रों में जब हम भगवान के स्वरूप को व्यक्तिगत रूप को देखने की योग्यता नहीं रखते, क्योंकि वो योग्यता तो प्रेमांजन चुरती भक्ति विलोचनेना के स्तर पर है, तो फिर ऐश्वर्य के माध्यम से इसे शास्त्रों में न्याय शास्त्रों में शाखा चंद्र न्याय भी कहा गया है कि शाखा के माध्यम से जैसे मां बच्चे को चंद्रमा दिखा रही है और बच्चा चंद्रमा नहीं देख पा रहा तो मां कहती है देख वो पेड़ देख, पेड़ की वो शाखा देख, वो शाखा के अंत में देख और वो कोने में देख वहां चंद्र है, तो पेड़ को माध्यम बना के मां चंद्र का दर्शन कराती है। तो उसी प्रकार से आचार्य ऐश्वर्य को माध्यम बना के जो कृष्ण चंद्र है उस ऐश्वर्य के स्रोत उनका दर्शन कराते हैं। तो वास्तव में दर्शनीय और दर्शन किया जाने के लिए अगर कोई विषय है तो वो परम भगवान है, लेकिन ये सृष्टि उनके दर्शन का एक माध्यम मात्र है। लेकिन शुद्ध अवस्था में जो राग मार्ग के भक्त हैं, रागात्मिका भक्त हैं, जैसे कृष्ण लीला में ब्रज में यशोदा माई जब कृष्ण को 3 महीने की आयु में दूध पिला रही हैं और उन्हें लगता है कि जैसे कृष्ण के होठों के बीच में उन्हें दांतों का दर्शन हो रहा है कृष्ण के, और वो आश्चर्यचकित हैं कि अरे 3 महीने की आयु में कृष्ण के दांत किधर से आ गए। फिर उनके मन में विचार आता है हां जब कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी और कह रही थी मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, तो उसे दर्द कैसे हो रहा था पूतना को इतना अगर कृष्ण के दांत ना होते तो शायद मैंने ही नहीं देखे आज तक। तो यशोदा माई कृष्ण के मुख के पास जाती है ध्यान से देखने के लिए कि ये दांत ही है ना, तो देखने के लिए जैसे ही पास जाती है तो कृष्ण जमा ही लेते हैं मुंह खोलते हैं, और जब कृष्ण मुंह खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा माई करती हैं, और जब यशोदा माई दर्शन करती है ब्रह्मांड का तो यशोदा माई आश्चर्यचकित होती है कि ये मेरा बेटा है कौन है ये क्या दिख रहा है, लेकिन तुरंत अगले ही पल वो इस बात को भूल भी जाती है और इस बात को महत्व नहीं देती। तो राग मार्ग के भक्तों के लिए ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, और उनके राग में कृष्ण के ऐश्वर्य को देखने के बाद भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो उसी वात्सल्य माधुर्य रस के आस्वादन और विनिमय में भगवान के साथ लगे रहते हैं। लेकिन अन्य भक्त जब भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो कभी कभी ये देखने में आता है कि उनके रस में विकार आ रहा है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण का विश्व रूप देखा, और जब अर्जुन ने कृष्ण का विश्व रूप देखा तो देखने के बाद अर्जुन कहते हैं भगवान आप अपने वास्तविक 2 भुजा वाले रूप में आ जाइए, मैं इसे और देख नहीं पा रहा हूं, सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है ये देख के। और ये देखने के बाद अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि आज तक मैंने आपका उपहास किया, आपको बड़ा साधारण सरल माना और मैंने ये नहीं समझा कि आप कितने विशेष हैं और आपके उस ऐश्वर्य को नहीं जाना, तो अर्जुन के रस में विकार आया प्रतीत होता है जब वो भगवान से क्षमा मांगते हुए उनसे पश्चाताप करते हुए उन्हें अपने समान देखने की त्रुटि का की स्वीकृति करते हुए नजर आते हैं। संजय ने भी भगवान का विश्व रूप देखा, और जब संजय ने भगवान का विश्व रूप देखा तो संजय रोमांचित हो गए भगवान के विश्व रूप को देखकर, क्योंकि संजय शांत रस में भक्त हैं, इसलिए वहां पर भी विकार आया दिखाई प्रतीत होता है। लेकिन जब ब्रज के भक्तों की बात करें, और उस समय रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रजवासियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति था, तो वो उस प्रेम का प्रभाव ऐसा था कि जैसे वो उदाहरण देते हैं कि हीरे को अगर किसी पात्र में रखा जाए स्वर्ण के, और ऊपर से घी डाल दिया जाए पिघला हुआ, और जब वो घी जम जाएगा तो हीरा छुप जाएगा और वो दिखाई नहीं देगा, उसी प्रकार से ब्रज का प्रेम जो है उस प्रेम की तुलना घी के समान की गई है, और ऐश्वर्य की तुलना हीरे के समान की गई है। यानी कि वो प्रेम इतना शक्तिशाली प्रभावशाली था कि ऐश्वर्य छुप गया और उसको महत्व नहीं दिया जा रहा था। शिला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का विश्व रूप महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर भगवान इसे दिखाना चाहते हैं तो एक भक्त को आध्यात्मिक दृष्टि से इसे देखना चाहिए, मन की आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब मन की आंखों से देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उसमें फिर हम कई प्रकार के मनोधर्मों का उपयोग करके जो शुद्ध भक्ति के पथ है उससे विचलित हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर विश्व रूप का दर्शन करें भी या उसके बारे में जाने भी, तो आध्यात्मिक स्तर से उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त दिव्य धरातल पर भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, और भगवान के जो दिव्य प्रेममय लक्षण है उनसे संबंध बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें, अंग्रेजी में कहते हैं कि गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस, भगवत विहीन ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। अब प्रभुपाद जी ये क्यों कहते हैं कि भगवत विहीन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वो कृष्ण का ही है, लेकिन फिर भगवत विहीन ऐश्वर्य क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं है भगवान की। और जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है उसमें भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति के ऊपर महत्व दिया गया है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से प्रश्न भी किया और पूछा कि प्रभुपाद जी अगर हम अन्य भगवानों यानी देवताओं आदि की पूजा करें तो क्या ये उचित है या अनुचित है? तो अगर उनकी पूजा करके हम कृष्ण भक्ति करना चाहें या उनसे मांगना चाहें कि हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सकें, तो क्या यह सही है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपने किसी पात्र में शराब को रखा है, शराब को निकाल के उस पात्र को अगर आपने धो भी दिया है, तब भी वो पात्र अनुपयोगी है। उसी प्रकार से माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र कृष्ण का, कृष्णई का शरणम, एक भक्त की योग्यता और विशेषता कैसे देखी जाए, वो भक्त कितना उन्नत है, कितनी उसने भक्ति पथ पे उन्नति करी है, ये प्रदर्शन इस बात से होगा कृष्णई का शरणम, वो कितना कृष्ण का आश्रय अपने जीवन में ग्रहण कर चुका है या करने की कोशिश कर रहा है। यही एकमात्र पैमाना है किसी के भक्ति के स्तर को नापने के लिए, और सब अन्य जितनी भी बातें हैं वो इस कार्य को करने के लिए सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन वो मुख्य भक्ति पथ का अनुशीलन करने वाले उपाय नहीं कहे जा सकते। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता बहुत सीमित है, इसीलिए आप देखिए हम अपने जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और जब अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो सफलता विफलता का जो है हमें सामना करना पड़ता है। और ऐसी अवस्था में आप देखें कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने जब कृष्ण की बात को स्वीकार ना करके खुद निर्णय लिया अपने जीवन का, तो वो भ्रमित अवस्था में अर्जुन को लेकर चला गया और अर्जुन ने कहा कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करें, रथम स्थाप्य अच्युता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में, क्योंकि निरीक्ष हम मैं देखना चाहता हूं। और प्रभुपाद कहते हैं जब भी हम कृष्ण के अलावा इस संसार को देखने की बात करेंगे तो हम इस माया शक्ति से भ्रमित हो जाएंगे, तो हम इस माया शक्ति से भ्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण का ऐश्वर्य असीमित है, कृष्ण के ऐश्वर्य को अगर हम भौतिक जगत में गिनने की भी कोशिश करेंगे तो वो गिना नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण की गुणों की कोई सीमा नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, यानी कि मैं ही हूं जीवन का लक्ष्य, मैं ही सबका पालन करने वाला हूं, मैं सारी सृष्टि को बनाने वाला हूं, मैं सबका आधार हूं, मैं ही वो सर्व कारण कारणम हूं। लेकिन जब हम यशोदा माता, नंद बाबा और इस तरह के महान भक्तों के जीवन के लक्षणों को देखते हैं, हालांकि कृष्ण कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, यानी कि वो पालन करने वाले हैं, लेकिन यशोदा माता और नंद बाबा ये क्या सोचते थे कि कृष्ण को हम पालन करते हैं। अगर हम कृष्ण की देखभाल नहीं करेंगे तो कृष्ण को कुछ हो जाएगा, वो कैसे अपनी स्वतः देखभाल कर सकते हैं, उनके पास ये वो समर्थ नहीं है अपनी देखभाल करने में। तो एक तरफ से कृष्ण कहते हैं मैं सबका पालन करने वाला हूं, दूसरी तरफ से यशोदा माई कहती है कि मैं कृष्ण का पालन नहीं करूं अगर कृष्ण की देखभाल नहीं करूं। और यशोदा माता जब कृष्ण को देखती भी रहती थी तो सोचती थी कहीं मेरे देखने से कृष्ण को नजर ना लग जाए। तो ये विचार इन भक्तों के अंदर देखने के लिए पाया जाता है। ऐसा जो रस है, ऐसा जो भावना है वहां, और कृष्ण भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ वो कृष्ण जो कि ब्रह्मा जी भी उन्हें देख नहीं पा रहे, सिर्फ उनसे प्रार्थना तक कर पा रहे हैं, इतना ही ब्रह्मा जी का संबंध कृष्ण से दिखाई दे रहा है। और वो जो कृष्ण है इन ब्रज के भक्तों के बीच में, इन रागात्मिका भक्तों के मध्य के अंदर कैसा रसास्वादन कर रहे हैं, कैसा साधारण एक बालक की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब कुछ उन पे निर्भर है, लेकिन जिन पे सब कुछ निर्भर है वो तो अपने भक्तों पर निर्भर दिखाई देते हैं। जिन पे सब कुछ निर्भर है दिखाया जा रहा है वो अपने भक्तों पर निर्भर है, कि कैसे नंद भवन जो कि रत्नों से बना था, कृष्ण अपनी छवि को देखकर डर जाते थे, अपने प्रतिबिंब को देखकर डर जाते थे। अब वो वहां पर भगवान कपिल देव की शिक्षाओं पे कहा गया है कि भयभीत होता है भगवान से, भय भी भयभीत है भगवान से, और भगवान नंद भवन में अपनी छवि को देखकर गिर जाते थे। और जब यशोदा माता और वो रोहिणी माता कृष्ण की चरण विहार लीला देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण चलना सीख रहे हैं, जिन पे पूरा संसार चल रहा है और वो कृष्ण चलना सीख रहे हैं, और जब वो कृष्ण चलते हैं तो चलते हुए गिर भी जाते हैं। जैसे एक बच्चा चलने की कोशिश करता है तो गिरता है, ऐसा नहीं कि वो सीधा दौड़ना शुरू कर देता है। और भगवान भी कैसे एक साधारण बालक की तरह अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, ऐसा नहीं कि वो अपने सिर्फ भक्तों को ही आनंद दे रहे हैं, ये लीला करते हुए वो भी आनंदित हो रहे हैं, वो अपने भक्तों का आनंद देखकर वो स्वयं आनंदित हो रहे हैं। तो जो जिन पर सब कुछ निर्भर वो अपने भक्तों पर निर्भर है। इसीलिए वास्तव में जो भक्त की, शुद्ध भक्त की पोजीशन है, वो स्थिति है, वो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, वो देवी देवताओं से भी महान है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन भी हमारे जन्म जन्मांतरों की बद्ध अवस्था को नष्ट करने में सक्षम है, सिर्फ उनका दर्शन करने मात्र से। और अगर उनके उपदेशों का पालन हम अपने जीवन में कर पाए तो ये निश्चित रूप से हमारे वैकुंठ गमन के मार्ग को खोल देने वाला होगा। कैसे? वसुदेव जी वो चिंता कर रहे हैं मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है। नंद बाबा से मिलने जब आए तो कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, पूछ नहीं रहे कि कृष्ण कैसे हैं। कहीं कंस के गुप्तचर उन्हें पता चल गया कि वसुदेव किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो कहीं कृष्ण के ऊपर कोई आक्रमण कंस ना कर दे, कोई हानि ना हो जाए, और वो सिर्फ पूछते हैं आपकी प्रजा कैसी है। अब प्रजा के बारे में वो नहीं जानना चाहते, वो तो जानना चाहते हैं प्रजा का एक भाग सिर्फ, और वो है कृष्ण। लेकिन कृष्ण का प्रत्यक्ष नाम नहीं लेते। तो वसुदेव जी कृष्ण की, वो कृष्ण जो सबको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, और उनकी सुरक्षा के अलावा कोई भी सुरक्षा सक्षम नहीं, और वसुदेव जी उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। तो वास्तव में ये जो भाव है, इसीलिए शिला प्रभुपाद जी जो दोनों चीजों का समन्वय प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं ऐश्वर्य को जानना आवश्यक है, लेकिन ऐश्वर्य सहायक है भगवान से प्रेम विकसित करने के लिए, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भगवान से प्रेम विकसित करना है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ संबंध में अपने भक्तों को श्रेय भी देते हैं, उन्हें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, और कई बार सेवा करते वक्त हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम भगवान के लिए कुछ योगदान दे पा रहे हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका जाने के लिए जब वो पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया तो ये जितने भी वानर थे कितने उत्साही थे, उन्हें लग रहा था हम भगवान की सहायता कर पा रहे हैं, हम भगवान की सहायता। जैसे शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इतना सम्मान देते थे, उन्हें कहते थे कि तुम्हारी वजह से मैं इतना बड़ा प्रचार कार्य कर पा रहा हूं, ये तुम लोगों जिनके कारण ये प्रचार हो रहा है। तो ससुरु महाराज जी कहते हैं जब प्रभुपाद जी ये कहते थे, उनको संन्यास दीक्षा देते वक्त प्रभुपाद जी ने कहा था देखो मैंने जब संन्यास लिया था तो मैं तो वृद्धावस्था में जाके संन्यास लिया, लेकिन तुम अभी इतने युवक हो, 20 वर्ष के थे, तुम इतने अभी युवक हो और संन्यास ले रहे हो, तो तुम कितना बड़ा काम कृष्ण की सेवा के लिए करोगे। तो ससुरु महाराज जी कहते हाँ हमें लगता था वास्तव में हम कुछ विशेष कर रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर 1977 का दिन जब आया तो उसके बाद हमें पता चला कि वास्तव में ये सब कर कौन रहा था, क्योंकि समस्याओं का पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। तो कि हम इधर संभालते तो उधर भागते, इधर भागते तो उधर भागते, चारों तरफ से समस्याएं आ रही थी, और फिर पता चलना शुरू किया कि एक्चुअली चला कौन रहा था, इस सबको कर कौन रहा था। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को श्रेय दे रहे थे, अपने अनुयायियों को श्रेय दे रहे थे, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को श्रेय दे रहे हैं। कैसे? अर्जुन युद्ध के मैदान में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, विषाद योग, पूरा का पूरा अध्याय विषाद के ऊपर है, और वो विषाद कर रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं गीता में कि चाहे तुम युद्ध ना भी करो, मेरी व्यवस्था के द्वारा ये सारे योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, इनमें से कोई भी यहां से जीवित निकलकर बाहर नहीं जाएगा। तो भगवान ने ये निर्णय तो पहले ही ले लिया था, तो अर्जुन को तो सिर्फ निमित्त बनाया गया और पूरा श्रेय दिया गया युद्ध का। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों से व्यवहार करते वक्त, अपने भक्तों से डील करते वक्त, उनकी भक्ति और उनके प्रेम के कारण अपने आप को भक्तों पर आश्रित बना देते हैं, और भगवान अपने भक्तों के द्वारा दी गई सेवा के प्रति अति अति कृतज्ञ भी रहते हैं। कैसे? त्रेता युग में जांबवन भगवान राम की सेवा बड़ी श्रद्धा और बड़े बड़े विश्वास के साथ करते हैं। अब वही जांबवन की पुत्री जांबवती से विवाह भगवान कृष्ण करते हैं। तो कैसे? युग बीत गया लेकिन भगवान ने जांबवन की सेवा को भूला नहीं, और उसकी सेवा के प्रति अपना आभार जो था, कृतज्ञता थी, एक युग के बाद भी प्रकट की। वास्तव में जब हृदय में कृतज्ञता ना हो, इस भक्ति पथ में होते हुए हमारे हृदय में प्रशंसा ना हो, जो हमने इस भक्ति पथ में प्राप्त किया या जो भी हम अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का जो बीज है वो कृतज्ञता की भूमि में ही रोपा जाता है। ये भक्ति का जो बीज है कृतज्ञता की भूमि पर लगाया जाएगा, और अगर कोई हृदय कृतज्ञ नहीं कृतघ्ना है तो ये भक्ति का बीज फलीभूत नहीं हो सकता। और इस बीज को फलीभूत होने के लिए भूमि को भी उपजाऊ बनाना पड़ेगा। एक बार शिला प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश की बात है, एक मंदिर में थे और टेम्पल प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी से पूछा, आज का भागवतम क्लास आप देंगे प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद ने कहा तुम दोगे आज, और वो घबरा गए क्योंकि प्रभुपाद जी के सामने क्लास देना का तो मतलब बहुत डर का विषय था अपने आप में। प्रभुपाद जी बोला तुम दोगे क्लास, मैं नहीं दूंगा। तो वो वास्तव में अच्छी क्लास देने के लिए जाने जाते थे, अच्छा प्रवचन दिया करते थे, और श्रोताओं में प्रभुपाद जी भी आगे बैठ गए उनके प्रवचन को सुनने के लिए। और जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो व्यास आसन में बैठे रोमांच कंपा श्रु तरंग भाजो सब होने लगा उन्हें, और अभी जो याद नहीं आना चाहिए वो सब याद आ रहा था, और जो याद आना चाहिए वो कुछ याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पहला वाक्य बोला प्रवचन का, और जब पहला वाक्य बोला और फिर दूसरा वाक्य जब बोला तो दूसरे वाक्य का पहले वाक्य से कोई लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल अलग, और श्रोता लोग एक दूसरे को देख रहे क्या बात कर रहे हैं। फिर तीसरा वाक्य बोला तो पहले दो वाक्यों से कोई संबंधित नहीं, चौथा वाक्य पहले तीन वाक्यों से कोई संबंधित नहीं, तो कैसे कर करके बड़ा कठिनाई से एक एक शब्द मुख से निकल रहा है, और सब लोग देख रहे हैं इसे आज क्या हो गया, ये इतना अच्छा प्रवचन किया करता था, इतना अच्छा बोलता था, ये क्या बोल रहा है, आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से टाइम व्यतीत हुआ, और जब प्रवचन अंत हुआ तो सब लोगों ने सोचा कि अरे भैया जान बची, किसी तरह से खत्म हो गया, निकलो प्रसाद पाए चल के। लेकिन प्रभुपाद जी उठकर उस भक्त टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आए और कहते हैं थैंक यू वेरी मच। अब प्रवचन में कुछ थैंक यू देने लायक नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद प्रवचन को थैंक यू नहीं कह रहे थे, उनकी शरणागति को थैंक यू कह रहे थे कि उन्होंने स्वीकार किया जो प्रभुपाद ने कहा। तो भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है, वो हमारे जुगनू समान ऐश्वर्य का क्या थैंक यू कहेंगे, और हम उन्हें क्या अपने ऐश्वर्य से आकर्षित करेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर में क्यों ना हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर का ही ऐश्वर्य की बात क्यों ना करें। तो भगवान तो थैंक यू हमारी शरणागति का करते हैं, और शरणागति का पता तो अच्छे समय में नहीं चल सकता। जब सब कुछ ठीक चले और हम कहें हम बड़े शरणागत भक्त हैं, आसान है, लेकिन जब सब कुछ हमारी अपेक्षा के विपरीत हो और तब भी हम विश्वास में कमी ना आने दें, ये वास्तविक शरणागति है। और ये शरणागति की स्तर की अपेक्षा भगवान सर्वधर्मान पारितज्य में कर रहे हैं। ये एक ऐसे शब्द हैं जो कोई भी व्यक्ति गीता को सुन और पढ़ रहा हो वो व्यक्ति बड़े निपुणता से इसे दोहरा भी सकता है और इसे सुन भी सकता है, इसके कई प्रकार के अर्थ भी बता देगा, लेकिन इसका अनुशीलन इसका पालन आसान नहीं है, और वो कोई विरला ही करता है। और ये भगवान की अपेक्षा है, और ये भगवान हमारे अंदर देखना चाहते हैं, यानी कि हमारी निर्भरता भगवान के ऊपर। और ये इतनी सरलता और इतनी तीव्रता से विकसित नहीं हो जाती, इस निर्भरता को विकसित करने में समय लगता है, भक्ति की परिपक्वता में समय लगता है। जैसे बांस का जब बीज बोया जाता है, एक किसान बांस का बीज बो के उसको जल देता है, एक साल तक पृथ्वी से कुछ बाहर नहीं आता, लेकिन वो फिर भी निष्ठा से उसको पानी देता है, उसकी देखरेख करता है। दूसरा साल बीज से कुछ बाहर नहीं आया, तीसरा साल कुछ बाहर नहीं आता, चौथा साल डेढ़ महीने में बांस 90 फुट लंबा हो जाता है। 3 साल तक किसान प्रतीक्षा करता रहता है उसे जल दे दे के उसका विकास करने के लिए। उसी प्रकार से हम सोचें कि माला पकड़ना सीखा हमने, तिलक लगाना सीखा हमने, भागवतम पढ़ना सीखा हमने, भागवतम के कुछ लोगों को जाना हमने, तो बस इसी से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तो यह आसान नहीं है। बांस का उदाहरण याद रखना चाहिए, उसको 90 फुट लंबा होने में 3 साल लगते हैं और 3 साल तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन किसान धैर्य नहीं छोड़ता, वो लगा रहता है उसे पानी देने में। इसीलिए ये अनर्थ निवृत्ति इतनी आसानी से नहीं हो जाती है। अब मानिए किसी को रोग बहुत गंभीर है, अब जब गंभीर रोग होगा और डॉक्टर कहता है भाई तुम्हारा डायग्नोसिस बता रहा है तुम्हें हाईएस्ट डिग्री का कैंसर है, जब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को यह पता चले फाइनल स्टेज के कैंसर में है, तो क्या वो दवा खाने में या परहेज करने में या दिनचर्या को बदलने में विचार करेगा, सोचेगा, या उसको बड़ी गंभीरता पूर्वक करेगा? क्या कहते हैं हम? गंभीरता पूर्वक करेगा। और उसी तरह से हमारा ये भव रोग एडवांस स्टेज का है, फाइनल स्टेज का है, लेकिन अगर हम दवा इस भव रोग की जो औषधि है एनएचए औषधि माया नाशी बार लागी, ये जो महामंत्र है, ये जो औषधि है इस भव रोग की, बीमारी एडवांस स्टेज की है, लेकिन हम ले कैसे रहे हैं? कोई बात नहीं, आज ध्यान पूर्वक जाप नहीं हुआ तो मैं कल कर लूंगा, आज मैं अच्छा भक्त नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं मैं कल बन पाऊंगा। जब बीमारी उन्नत है तो अभ्यास भी गंभीरता पूर्वक होना होगा, और गंभीरता पूर्वक किया गया अभ्यास धैर्य के साथ, उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति, निश्चित रूप से भक्ति की प्रसिद्धति होगी ही होगी। तो उस ऐश्वर्य के स्तर से प्रेम के स्तर तक जाने का मार्ग इस गुरु परंपरा ने, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, वो काफी है अपने आप में हमें भगवत धाम ले जाने में, हमारी संवैधानिक स्थिति की जागृति में, उसके प्रति शरणागति बना के रखना, उसके लिए हमें धैर्य चाहिए। अगर वो धैर्य प्रभुपाद जी की विधि के प्रति बनाकर रखी जाए तो निश्चित रूप से परिणाम अति शीघ्रेणा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विचार के साथ यहीं विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।